चलिए आगे देखते हैं। रुकू नंबर 12, टॉपिक है जादू कुफर है। आयत नंबर 97 से 103, सूरत अल बकरा। कुल मन कान अदुवल लि जिब्रील फइन्नहु नज़लहु अला कल्बिक अला कल्बिक बिस्मिल्लाहि मुसद्दिकन लिमा बैन यदै। ए नबी, आप कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन हो, जिसने आपके दिल पर पैगाम बारी ताला उतारा है, जो कुरान इन के पास की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है, तो अल्लाह भी इसका दुश्मन है। जो शख्स अल्लाह का और इसके फरिश्तों और इसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन हो, ऐसे कुफार का दुश्मन खुद अल्लाह ताला है। और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं, जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता। ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं तो इनकी एक ना एक जमात इसे तोड़ देती है, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इन अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया के जानते ही ना थे। जरा से इस जुमले पे गौर कीजिएगा, किताब को पसे पुश्त डाल दिया, जिसको हम खुद भी कहते हैं बिहाइंड द बैक्स। जब किताब पीछे होती है ना, जैसे आज उम्मत मुस्लिमा की हुई है, तो नतीजा क्या होता है? वत्तबउ, और उस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन हजरत सुलेमान की हकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना तो कुफर किया था, बल्कि ये कुफर शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाते थे। बाबुल में हारूत और मारूत पर जो उतारा गया, जो दो फरिश्ते थे, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तू कुफर ना कर। फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खामंद और बीवी यानी हस्बैंड एंड वाइफ में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा ना पहुंचा सके, और वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखरत में कोई हिस्सा नहीं है, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश के वो जानते होते। अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता, अगर ये जानते होते। आप देख रहे हैं बार बार ये बात आ रही है, अगर ये इल्म लेते, अगर ये जानते होते। तो इस रुकू में ईमान से मुतलिक तीन आयात गुजरी हैं, जरा देखिएगा। आयत 97, कुल मन कान अदुवल लि जिब्रील, इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है? जिब्राइल के बहाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार। जब इनको कुरान की दावत दी गई तो नबी सल्लम पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें इज्जतें देगा, कहने लगे कि आपके पास वही कौन लेकर आता है? तो कहा गया कि जिब्राइल लेकर आते हैं। कहा नहीं नहीं फिर हम सॉरी, फिर हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे ऊपर बड़े मुश्किल हुक्म लेके आए थे तौरात के। किसी ने कहा वो तो अजाब के फैसले और वो दुनिया की पकड़ के फैसले लाते थे। जरा सा समझिए, जिस दिल में सच्ची तलब होगी ना हिदायत की, जो ही उसको हिदायत दिखेगी ना, तो वैसे ही जैसे पायलट फ्लेम जलते ही चूल्हे में आग जलती है, जिसके अंदर हिदायत की तलब नहीं होगी ना, वो बहाने बनाएगा। वजह क्या है? भूख नहीं है। बच्चे को भूख नहीं होती ना, तो माँ जो मर्जी उसके सामने रख दे बहाने करेगा, इधर से क्यों पकड़ा है, भाई ने क्यों खा लिया, ये क्यों हो गया, वो हो गया। और भूखे बच्चे के हाथ में रोटी भी पकड़ा दे तो खा लेता। इनको हिदायत की भूख नहीं थी। आज बहुत सारे लोग भी यही कुछ करते हैं, कुरान पढ़ो, नहीं 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 दीनदार ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, हम नहीं मानते, हमने बड़े दाढ़ी वाले देखे हैं जी, मौलवी साहब जी, जो फिर लतीफे भी मौलवियों के नाम पे बनते हैं। भाई आपको वो मौलवी साहब क्या कहते हैं? जो बात आपको कह रहे हैं अगर आपके फायदे की तो आप उनकी बात ले लें। तो ये असल में बहाना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने का। ये मुझे एक मिसाल से समझ आता है। आपको कोई ब्रांडेड जोड़ा चाहिए, आपके मियाँ साहब ने मंगाया, जोड़ा भी आपकी पसंद है, लेकिन वो आ गया फेडेक्स पे, और फेडेक्स ने कभी आपका कोई पैकेज गुम किया था। आप कहते हैं मैं तो ये जोड़ा कभी नहीं पहनूंगी, क्यों भाई बेगम, क्या हुआ? फेडेक्स पे क्यों आया? जी ये यूपीएस पे आता है, जी फलाम पे आता तो लेती ना, समझ नहीं, कोई एक भी नहीं है मेरा ले, बावली सिस्टर भी ये नहीं करे होगा फेडेक्स को भारत में डाले मुझे जोड़ा दें, ये तलब नहीं है। आज भी आप किसी को दावत देते हैं ना कुरान सुनिए? अच्छा, ठीक है देखेंगे। बहुत प्रमोशन होती है, बहुत बात करते हैं, बहुत ये करते हैं। नहीं, टाइम बहुत है, मसरूफ बहुत है। किसी ने कहा कि कुछ लोग अभी रमजान मोड में नहीं आए, किसी ने कहा लो रमजान से पहले तो लोग नमाजें भी छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं रमजान में बहुत सारी पढ़ के बख्शवा लेंगे, तो आप अब उनको कुरान की दावतें दे रहे हैं, ये तो हमारे पकौड़े समोसे रोल बनाने के देना। हर एक अपना एंगल होता है। आगे देखिए आयत 100, अब कुल्लमा आहदु अहदन नबजहु फरीक मिनहुम बल अक्सरुहुम ला यूमिनून। और जब कभी वो अहद बांधते हैं तो एक गिरोह उनमें से उस अहद को तोड़ देता है, बल्कि अक्सर तो ईमान ही नहीं लाते। क्या पता चला कि वादे तोड़ने वाले ईमान भी नहीं निभाते, यानी जो वादा ना निभाए वो ईमान भी नहीं निभाते। और आयत 103, वलमसूबतुमिन, और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो यकीनन बहुत जजा पाते अल्लाह के पास से अच्छी, काश वो जानते। यानी इसमें अब जादू के तस्करे के फौरन बाद ईमान की दावत है, क्योंकि जादूगर का ईमान खत्म हो जाता है, हदीस की रोशनी से हमें पता चलता है। तो क्या पता चला कि जो ईमान लाकर परहेजगारी करेगा वो बेहतरीन अजर पाएगा। अब इसमें से कुछ एक्शन पॉइंट लेते हैं फेथ इन एक्शन की सूरत में। नंबर एक, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रह जाते का बैर। भाई आपको जिब्राइल ने क्या कहा है? आप क्यों उनके साथ इस तरह का बैर रखते हैं? तो वही बात है कि ना मानने के 100 बहाने। हजरत सुलेमान की किरदार कुशी, अब इस पे डिटेल का वक्त तो नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अनयूजल मिरेकल्स दिए थे, जैसे परिंदों की बोलियां जानते थे, जिन्नात मुसखर किए थे, ये सारा कुछ हम आगे सूरह स्वाद और उसके इर्द गिर्द की सूरतों में पढ़ेंगे। यहूद ने ये मशहूर कर दिया कि हजरत सुलेमान नबी नहीं जादूगर थे। ये बात रिवायतन दर रिवायतन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके साथ चल रही थी, हत्ता के जो मदीना में लोग थे उनके भी दिमागों में यही सवाल था, जबकि सुलेमान ऐसे नहीं थे। अल्लाह ने कई 100 साल बाद इस किताब में ये आयतें उतार कर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित कर दी। तो आपके मेरे लिए इसमें अमल का नुक्ता क्या निकला? कि किसी अल्लाह वाले से बैर नहीं लेना, और अगर वो सच्चा है, और अगर आप दीन में किसी मामले में सच्चे हैं और लोगों को आपके बारे में कोई गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो बेफिक्र होकर अपना काम करते रहिए, एक दिन आएगा अल्लाह उनके दिलों को साफ कर देगा। फिर अगली बात इसमें, निजात आखरत की जो है उसका इन्हिसार अमल पे है ना, आमनु आमिलु सालिहात है, लोग बेअमली पे करते हैं, यानी आखरत में निजात का इन्हिसार अमल पे है लेकिन कुछ लोग उसको बेअमली में ढूंढते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे इन आयतों के अंदर लगी, अमल की पुकार को बरकतों का पुरेसरार नुस्खा समझ लिया। ये किस चीज की बात हो रही है? कुरान। कुरान अमल की किताब थी, आज हमने इसको बरकत की किताब समझ लिया। बेटी के सर पे रख दो तो ये बरकत, नए घर में 2-4 दिन सूरत वातिया बकरा चला दो तो जिन भाग जाएंगे, हाउस वार्मिंग पार्टी से पहले जरा एक एक पारा करके सहेलियों से कुरान पढ़ा लो तो ये होगा। क्या आज हम ये नहीं कर रहे? आप पढ़ रहे हैं, ये कोई उस कौम की बनी इसराइल कौम की चुगलियां नहीं हो रही, आपको मुझे बताया जा रहा है कि एक चुनी हुई कौम कैसे मकदूब बन गई, और अल्लाह करे कि हम अपनी इसलाह करें। फिर इसमें जादू से मुतलिक बहुत कुछ था, आप इन आयतों की अलग से तफसीर भी सुन सकते हैं, हमने एक पूरा कोर्स किया था दम जरिया इलाज, उसमें भी जादू पे बहुत बात हुई है, उसका इलाज भी है, वेबसाइट पे भी है, ऐप के ऊपर भी ये मौजूद है, और ऑफ कोर्स बाकी मीडियम पे भी मिलेगी, आप चाहें तो उससे फायदा उठा लें। जो जादू करता है या कराता है ना, उसको तजदीद ईमान की जरूरत होती है, यानी नया ईमान करो। निकाह टूटता है तो कहते हैं ना नया निकाह पढ़ो, जादू का करना या कराना, इवन अगर आप कहते हैं कि मुझ पे किसी ने कर दिया था मैं उस पे करूंगी, तो इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि जादू कुफर है। अल्लाह हम सबको ऐसी चीजों से बचा के रखे। आगे चलते हैं रुकू नंबर 13। गुस्ताखे रसूल के लिए दर्दनाक अजाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। 104 से 112 आयत है इस रुकू की। आइए तर्जमा देखते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना न कहा करो बल्कि उन्ज़ुर ना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। इनके इस हसद से क्या हुआ? अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खसूसियत से अता फरमाए, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें, इससे बेहतर इस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? क्या तुझे इल्म नहीं कि जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं? क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहि सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफर से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाजे हो जाने के महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ करो और छोड़ो, यहाँ तक अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम नमाजें कायम रखो और जकात देते रहा करो, और जो कुछ तुम भलाई अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद और नसारा के सिवा कोई और ना जाएगा। ये सिर्फ इनकी आरजुएं हैं। इनसे कहो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा। इस पर ना तो कोई खौफ होगा और न गम और उदासी। खूबसूरत रुकू था। 3 आयात इसमें ईमान से मुतल्लिक है। सबसे पहले 104 से 104 बकरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। इस आयत का जो मेन थीम है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और वो क्या है? तौहीन रिसालत के मुर्तकिब लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने के आदाब। ये है जी वो आयत जिस पे आप नोट कर लें, शुरू में करवा दिया गया। यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। हमने इस साल के दौरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयतों को सुनना है और समझना है। ये उसकी पहली आयत है। जरा सा महसूस करें, आप बैठे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। आपको कोई कहेगा तो क्या कहेगा? ईमान वालियो। बैठे रहेंगे अपनी जगह, टस से मस नहीं होंगे। को बड़ा बुलाए ना तो बंदा उठे ना, तो वो बुलाने वाले की बेइज्जती महसूस होती है। उस्ताद के बोलो और कोई ना बोले तो कहते हैं बोलो तो सही। आप अपने बच्चे को के पानी पिलाओ और वो उठे ना, फिर आपको ये गम नहीं रहता कि पानी नहीं पिला रहा? आपको ये गम आ जाता है कि इसने मेरी बात का नोटिस ही नहीं लिया। ऐसी है ना। तो जब कुरान की कोई आयत आए, आज से एक छोटा सा अपने लिए अमल मासूम सा रख लें। अभी तो दिल में कह दें, केले में पड़ेंगे तो जी कह दें, जी अल्लाह जी, लिख लें ये जुमला। और आपको जब पूछा जाए तो बताइएगा कि आज मुझे मेरे रब ने एक बार पुकारा। ईमान का टॉपिक पढ़ना और पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। जितना ईमान बढ़ता जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना उतना ही आसान होगा। फिर इसमें मोमिनों को, ईमान वालों को अल्लाह ताला ने कुछ सबक दिए, वो नोट कीजिए जल्दी से। सहाबा किराम जब नबी की महफिल में होते थे ना, तो कोई बात समझ ना आती तो क्या कहते थे? रायना। उर्दू में आप कहेंगे ना, हमारी रियायत कीजिए। जैसे मैं बहुत तेज बोलने लग जाऊं तो आप कहेंगे ना, जरा एक्सक्यूज मी, पार्डन, प्लीज, मैसी, थोड़ा सा स्लो बोले। तो सहाबा किराम को कभी ऐसी कोई बात होती, बल्कि अल्लाह के नबी तो वैसे ही बहुत तीन तीन दफा बात को करते और आराम से बात करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आपको मुखातिब करना या रोकना कुछ होता, तो साहबा कहते थे रायना, हमारी रियायत कीजिए। अब जिन दुश्मनों की यहाँ बात हो रही है, बनी इसराइल के वो लोग जो मदीना में थे, कुछ वो भी आके बैठ जाते थे चुपके चुपके कि देखें जरा वहां क्या हो रहा है। तो जब ऐसा कोई मौका आता ना, तो वो मजाक के लिए और उस महफिल के तकद्दस को बदलने के लिए क्या कहते थे? रा ई, लंबा करते ई को, राई कहते हैं शेफर्ड को, चरवाहा। और वैसे भी हीब्रू लैंग्वेज में यानी अबरानी जुबान में राइन कहते थे अहमक को, नाउजुबिल्ला, स्टुपिड। और ये अरबों वो तौहीने रिसालत करते थे। आज कोई आपके नबी के बारे में बात करे, उनके कार्टून बनाए और इस तरह की बातें करे, और हम सारे मुसलमान अग्रेसिव होकर अपने ही शहर की बिल्डिंग्स के शीशे तोड़ दें। अल्लाह ने यहाँ असूल सिखाया, लिखिए। पांच बातें बोलूंगी, कोई क्ली लिख सके लिख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। गुफ्तगू में साफ लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए, मुश्तबे यानी शुबे वाले लफ्ज बोलने ही नहीं चाहिए जिससे कोई बुरा पहलू निकल आए। दूसरी बात, जो बात कही जाए इसी को गौर से सुनिए कि दोबारा कहने की जरूरत ही ना पड़े। तीसरी बात, कि सवाल की कसरत इंसान को सीधे रास्ते से भटका देती है, इसलिए सवालों जवाब की बजाय इबरत और नसीहत का जहन पैदा कीजिए। यानी यहां बैठकर आप हर बात नहीं लिख सकते, लेकिन अमल के नुक्ते तो लिख सकते हैं। और फिर अगली बात क्या है, अपने ईमान की हिफाजत करो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी गलती तुमसे हो जाए कि तुम ईमान से हाथ धो लो, यानी छोटी सी बात पे ईमान से बंदा महरूम हो सकता है। और पांचवी बात क्या है, कि दुनिया में किसी के पास अगर कोई खैर देखो तो हसद और जलन में मुब्तला ना हो, क्योंकि ये अल्लाह का एक अतिया है जिसके फैसले के तहत उसे एक बंदे को मिला। जो लोग दूसरों की किसी नेमत पे हसद करते हैं ना, तो असल में वो अल्लाह ताला की बांट से नाराज है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे दिल इतने बड़े हो जाएं और हम अपने आप को इतना ज्यादा बेनियाज समझ लें इन सारी चीजों से जिसमें दूसरे लोग मौजूद है। फिर इसके बाद एक छोटी सी चीज, अगली आयत देखिए, 108 में भी ईमान का तस्कर है। वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमानी फकद दल्ल सवा सबील। और जो कोई कुफर को बदल ले ईमान से, यानी ईमान को बेच के कुफर ले आए, सोने की एक चीज बेच गए ना तो चार छह आर्टिफिशियल ले आए, माँ क्या कहेगी, ये क्या किया तुमने, कहीं काम ही आता, ये आर्टिफिशियल जो ले आई है ये बिकेगा। ये बात तो सबको समझ आ गई। लेकिन जब कोई बंदा जिंदगी में अपने ईमान को बेच के ये पकड़ो और उसके बदले में कुफरिया चीजें खरीद लाए, तो कोई कुछ नहीं कहता। सबसे सस्ता सौदा ये हो रहा है आज दुनिया में। पहले पारे के शुरू वाले हिस्से में भी हमने पढ़ा था कि ला तश्तरू बि आयातिल्लाही समनन कलीला। तो ये बारगेनिंग, ये ट्रेडिंग, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन दुनिया के हर बाजार में हो रही है। अल्लाह हमें बचा कर रखे। फिर अगली आयत 109 है, वद कसीर मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम। चाहते हैं बहुत सारे लोग अहले किताब में से कि काश वो तुमको तुम्हारे ईमान के बाद उससे फेर दें। कितने ही लोग हैं जो इस वक्त भी शायद इस सोच में होंगे कि आपको इस कुरान से हटाकर दोबारा अपनी सरगर्मियों में मुलव्वस कर लें। अल्लाह ताला मुझे आपको बचा कर रखे। फिर अगला अमल का नुक्ता, किसी की नेमत से हसद नहीं करना बल्कि दुआ देनी है। हिकमत समझ ना आए तब भी हुक्म पर अमल करना, और इल्म की महफिल में पूरी तवज्जो से बैठना, गैर जरूरी सवाल नहीं करने। नासिख और मनसूख पर ईमान लाना है क्योंकि इसमें अल्लाह की हिकमत है। इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो आपको बताएंगे मजीद। जैसे पहले एक औरत की इद्दत 1 साल की होती थी, अब 4 माह 10 दिन की है, छोटी हो गई ना, तो इसकी क्या हिकमत है। दोनों आयतें कुरान में मौजूद है, अल्लाह की मर्जी, जो चाहे लिखे चाहे मिटाए। सूरह रात में भी अल्लाह कहते हैं वो मिटा देता है जो चाहता है और लिखता है। कुछ लोग इस पे भी बड़े एतराज करते थे, कल कुछ कहा आज कुछ कह दिया। अल्लाह कहते हैं तुम्हें तनकीद की जरूरत नहीं, ये मेरी किताब है, ये मेरी शरीयत है, मैं जो चाहे रखूं जो मर्जी करूं। आपके तो लॉ में कई अमेंडमेंट्स नहीं होती रहती, आप जिस मुल्क में भी रहें उधर कई लॉज चेंज भी होते हैं, तो क्या अल्लाह नहीं चेंज कर सकता। ये असल में शोषित है, ये जो कुछ आजकल हम पढ़े ना इस आयतों का, इसका एक बड़ा सा नाम रख लें, यहूद के शोषे, यहूद मदीना के शोषे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों से लोगों को बदगुमान करना चाहते थे, नहीं उधर नहीं जाना, वो तुम्हारा अकीदा खराब कर देंगे, वो तो तुम्हें बाप दादा के दीन से अलग करेंगे। तो अल्लाह ने कहा इनकी इन बातों को छोड़ो, तुम अपना काम करो। और सबसे प्यारी बात, जन्नत में जाने का मेयार अल्लाह पर ईमान और सुन्नत पर अमल। और फिर अगली बात इसको तो लिख लीजिए कि हर दौर में जब दीन पे जवाल आता है ना तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है और वो क्या है, खुद साख्ता दीन को खुदा साख्ता दीन कहने लगते हैं लोग, यानी खुद बनाई हुई चीजें अल्लाह के नाम पे पेश कर देते हैं, अल्लाह बचा के रखे। फिर अगली बात खुश फहमी है, नहीं यदखुल अल जन्ना इल्ला मन काना फुला फुला फुला, नहीं जाएगा जन्नत में मगर जो अपने आप को ये ना के इस दरवाजे से गुजर जाओ तो जन्नती, ये खा लो तो जन्नती, ये कर लो तो जन्नती। अल्लाह कहते कुरान पढ़ो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि फेथ इन एक्शन क्या है। और फिर इसी तरह से मनसबी फजीलत को नस्ली और गिरोही फजीलत समझ लिया, जिनका जिक्र हो रहा है ना उनको इस बात का बड़ा मान था कि हम हजरत इब्राहिम की डायरेक्ट नस्ल से हैं, अपना स्टेटस ऊंचा करते थे। आज भी को किसी दीनदार के साथ जुड़े, वो तो मेरे हाफिज साहब, मेरे तो ससुर हैं, और मेरे दादा तो जो आलिम थे, भाई आप क्या हैं? कोई किसी डॉक्टर का बेटा तो वो डॉक्टर तो नहीं बन जाता। आज भी कुछ लोग नेक लोगों से राहो रस्म इसलिए भी बढ़ा लेते हैं ताकि लोगों से कि वो हमारे पास हैं, आते जाते हैं, हम जब फोन करें चाहे हमको फोन कर लेते हैं, तो ये क्या बात है? तो गोया के जो चीज अमल से मिलनी थी उसको किसी निस्बत से लेना चाहा, ये भी उनकी गलती थी, अल्लाह बचा के रखे। चलिए रुकू नंबर 14 आयत 113 से 121, बहुत ही अहम टॉपिक है इसका, आपको टॉपिक से अंदाजा हो जाएगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपस का इख्तलाफ मस्जिदों को वीरान कर देता है, आज कई मस्जिदें रोती हैं, ये अलग बात है कि हमें उसकी आवाज ना आए। आइए तर्जमा पढ़कर बात करते हैं। वकालत यहूद लैसत नसारा अला शयिन, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शयिन, यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं और नसरानी कहते हैं कि यहूद हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं, इसी तरह इन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनके इस इख्तलाफ का फैसला इनके दरमियान कर देगा। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र किए जाने को रोके और इनकी बर्बादी की कोशिश करे? ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए, इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है, और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और वुस्सत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नाउज़ुबिल्ला, नहीं बल्कि वो पाक है, ज़मीन आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में है और हर एक इसका फरमा बरदार है, वो ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला है और जिस काम को करना चाहता है कह देता है कुन फयकुन, हो जा बस वो हो जाता है। अल्लाह ताला मेरे आपके लिए भी हिदायत का कुन लिख दे, सेहत और आफियत का कुन लिख दे, और आपकी सारी दुआओं पे अल्लाह ताला कुन कह दे। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा था कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता। देखिए छोटा मुंह बड़ी बात, बड़े लोग हर एक से बात तो नहीं करते, कहते थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्ता क्यों आता है हमारे पास आए, ये देखिए इससे दिख रहा है कि वो कितने किबर में भरे हुए थे, या फिर हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह की बात इनके अगलों ने भी कही थी, इनके और उनके दिल यकसां हो गए, हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और जहन्नमियों के बारे में आपसे सवाल जवाब नहीं होगा, आपसे यहूद और नसारा हर गेज राजी ना होंगे। उम्मत मुस्लिमा को अपने दिल पे याद लिखनी है, नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब, हम दूसरों को खुश करने के लिए अल्लाह को जितना मर्जी नाराज कर ले उन्होंने हमसे खुश नहीं होना। ये आयत दलील है, इसका नंबर नोट करके ले जाएं घर जाके, इसकी तफसीर सुनिएगा। तुम टांगे नंगी कर लो, तुम क्यूलॉट्स पहन लो, तुम स्काफ उतार के फेंक दो, तुम पूरे ड्रेसअप में उनसे सिमिलेट हो जाओ, तुम उनकी रस्में मनाओ, तुम उनके फुला फुला दिन मनाओ, वो तुमसे खुश नहीं होने वाले, कर लो जो करना, जब तक कि आप इनके मजहब के ताबे ना हो जाए, ये है अल्टीमेट गोल। वो आपको अपने फॉलोअर बनाना चाहते हैं, आप मान जाए बड़े खुश होंगे। अभी एक आपको जुमला दिया तीसरे गिरोह का, वो इस्लाम के दुश्मन होते हैं और इस्लाम दुश्मन लोगों के वो दोस्त होते हैं, ये जुमला इधर آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم جانے کے پھر بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. کیا پتہ چلا؟ اس رکوع میں بھی ایمان سے متعلق ایک آیت ہے. اب آہستہ آہستہ آپ کا ذہن انشاءاللہ ساتھ ساتھ کھلتا جائے گا نا، آپ خود بھی ترجمے کے دوران نوٹ کیا کریں کہ لفظ ایمان آیا کہ نہیں. تو کون سی آیت ہے؟ 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو نیک اخلاق اور کردار والے کتاب صرف پڑھتے نہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے گا ذرا. فیتھ ان ایکشن میں پہلی بات تو اس میں آج آپ کو درد کے ساتھ کہوں گی کہ مسجدوں کی ویرانی کیوں ہوتی ہے. اکثر مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے مسجد نہیں جاتے، جوان ہوتے جاتے ہیں تو ساتھ ہی مسجدوں سے کٹتے جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ مرد حضرات کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں جانا مسجد میں، وہاں بہت بحثیں ہوتی ہیں، فقہی باتیں. کچھ ممبر تو اللہ کے لیے کم اور آپس کے جھگڑوں کو اور ہوا دینے کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں. آپ پاکستان گئیں یا انڈیا گئیں، چلو خالہ کو ملا ہے. جب خالہ کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ خالہ گھر نہیں ہے، ان کی بہو بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. خوب انہوں نے آپ کی خاطر کی کیونکہ آپ سے امریکہ سے آئی ہیں، عزت تو بڑی ہوگی نا آپ کی. وہ سب کچھ اپنی بیچاری کوششیں کریں گی، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ اچھا پھر میں چلتی ہوں. خالہ گھر نہ ہو تو خالہ کے گھر دل نہیں لگتا، پھپھو گھر نہ ہو تو پھپھو کے گھر دل نہیں لگتا. پھپھیاں نانا ناراض ہو جائیں، اصل مسئلہ کیا ہے، پھپھیاں ناراض بھی بڑی جلدی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، شاید خالاؤں سے ہم بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اور پھپھیاں ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے کلچر میں پھپھیاں مناتے ہیں، کیونکہ ہر پھپھی نے ناراض ضرور ہونا ہے بھائی کے گھر شادی پہ یا کم، دل میں رکھے ہوتے ہیں گراج، اچھا ذرا آلے بیٹے کی شادی پھر پوچھیں گے. تو سارے رشتے بہت پیارے، خالائیں بھی پیاری، پھپھیاں بھی پیاری. اللہ آپ کی میری سب خالائیں، پھپھیوں، مامیوں، چچیوں سب کو عافیت میں رکھے. اچھا اب آپ کا دل کیوں نہیں لگا وہاں؟ اب میرا ایک جملہ لکھیے مسجد کو ذہن میں رکھ کر، گھر والا جب گھر نہ ہو تو دل نہیں لگتا. جب مسجدوں میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہاں دل نہیں لگتا. اللہ ہمیں معاف کرے. اور اس سے دکھ والا جملہ میں بول دیتی ہوں، فرقہ بندی نے، گروہی اور مسلکی جنگوں نے آج مسجدوں کو ویران کر دیا. ہماری یوتھ تو مسجدوں میں کم جاتی ہوگی، اب ان کا دل نہیں لگتا، ان کا دل کہیں اور لگتا. کیا پتہ چلا؟ مسجدوں کو ویران نہیں کرنا، آباد کرنا. اللہ اس مسجد کو بھی آباد رکھے جہاں بیٹھے میں، اور اللہ اس کی خدمت کرنے والوں کو بھی آباد رکھے. اور یہ دعا ہر ایسی مسجد کے لیے ہو جہاں اللہ کے دین اور قرآن سنت کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. دوسری بات، آپس کی مخالفت اور گروہ بندیوں سے بچنا، اختلافات کو اللہ کی کتاب سے حل کرنا. وحدت امت کا ایک ہی راز ہے، سب اپنی اپنی کتابوں کو لا کر اس کتاب کے آگے رکھ دیں اور اس قرآن اور سنت کی روشنی میں سب چیزوں کو لے آئیے. اس میں ہم نے پڑھا تھا قرآن کے حقوق، یہ سلائڈ تو آپ ضرور بعد میں روک کر اس کو لکھے گا. الحمدللہ نور القرآن انسٹیٹیوٹ کا یہ مین سلوگن بھی ہے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنا. کتنے حقوق ہیں دوہرا لیجئے. نمبر ایک، اس کو مانے، یؤمنون بہ، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اسی میں امتوں کے عروج اور زوال کی داستان ہے. پھر اس کو سمجھ کر پڑھیں اور ٹھیک پڑھیں، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس پر عمل کریں، اور سب سے بڑا حق اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. کس کا کام ہے یہ؟ پڑھانے والوں کا نہیں، وہ تو پڑھائیں گے، یہ آپ کا میرا کام ہے. آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر اپنے اس اجر کو کئی گنا زیادہ کر سکتے ہیں دوسروں کو اس کی دعوت دے کر. اور انوائٹ کرنا ہے کہ انفارم کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ انفارم.